पहले थोड़ा सा विचार इस बात का और कर लें कि मेरे अपने जीवन की जो यात्रा है वो मैं किस तरह से कर रहा हूं, ताकि मेरे अपने जीवन की उस यात्रा में मुझे किस तरह के संस्कार अपने जीवन में इकट्ठे करना है और किस तरह के संस्कार मुझे जीवन में जो अज्ञानतावश इकट्ठे हो गए उनको हटाने की प्रक्रिया भी साथ साथ करनी, ताकि ये समझ में आए। क्या होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति यात्रा करता है, काहे में यात्रा करते थे पहले लोग, रथ में यात्रा करते थे और उसमें घोड़े भी जुटे हुए हैं, एक बड़ा अच्छा प्रतीक है। हमारे अपने जीवन में भी हम इसी तरह अपने जीवन की यात्रा कर रहे हैं, उसमें हम एक रथ में बैठे हुए हैं और बलगाएं हमारे हाथ में हैं, घोड़े रथ में जुटे हुए हैं। अब हम अपनी यात्रा को कैसे आसानी से कर सकते हैं, यदि हमारे घोड़े ठीक ठीक दिशा में जाएं, उसकी बलगाएं हमारे अपने हाथ में हो और हमारा विवेक जागृत हो, तो हम आसानी से अपने गंतव्य पर पहुंच सकते हैं, हम अपने जीवन को एक ठीक दिशा में ले जा सकते हैं। रथ क्या चीज है, रथ ये शरीर है और उसमें बैठा हुआ कौन है, वो अपनी चेतना है, वो हमारी अपनी आत्मा है, और जो घोड़े हैं वे हमारी पांचों इंद्रियां हैं और बलगाएं हमारा अपना मन है। लेकिन बलगाएं और घोड़े यदि चेतना के हाथ में रहें और चेतना विवेकवान हो, ये बहुत जरूरी है। सबके पास रथ है, सब उसमें बैठे हुए हैं, सबके घोड़े भी दुरुस्त हैं, सबकी बलगाएं भी हाथ में हैं, लेकिन विवेक नहीं हो तब तो बहुत मुश्किल है। बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे, इस जीवन की यात्रा में मुझे आसानी कब होती है, जब मेरा विवेक मुझे इस बात के लिए सजग और सावधान रखता है कि किस रास्ते से जाना है और कैसे मुझे अपने गंतव्य तक पहुंचना है, कौन कौन सी बाधाएं मेरे जीवन में आ सकती हैं, कौन कौन सी मलिनताएं मेरे जीवन में आ सकती हैं, कहां कहां से आ सकती हैं, इस बात का ध्यान मुझे रहे और उन मलिनताओं से मैं कैसे बच सकता हूं, इस बात का मुझे ध्यान रहे, तो मैं अपनी जीवन की यात्रा को बहुत आसानी से कर सकता। आज हमें यही चीज समझनी है। वैसे तो हमारे जीवन में जितने भी कर्म आते हैं वे हमें संसार में ही भटकाते हैं, कुछ भटकाते हैं कुछ अटकाते हैं। जैसे कि जो बुरे संस्कार हैं वे तो हमें भटकाते हैं, जो अच्छे संस्कार हैं वे हमें दिशा तो देते हैं, लेकिन जब तक हम और आगे पुरुषार्थ नहीं करेंगे वे हमें अटकाए रखते हैं जीवन में। आज आप इस बात के लिए तैयार रहिएगा कि मैं कोई उदाहरण नहीं सुना रहा हूं। हाँ, मैं बहुत सोचता रहा कि इस प्रक्रिया के लिए कोई उदाहरण दिया जा सके, लेकिन लास्ट में अगर रिकॉल कर रहा हूं बहुत देर से, शुरू में ही थोड़ा सा मंगलाचरण से सारी चीज शुरू होती मेरे साथ, मुश्किल ये है, तो मंगलाचरण से ही सारी चीज शुरू हुई तो वो उड़ गई, वो मंगलाचरण इतना बढ़िया हुआ कि मेरे दिमाग से वो किस्सा कहानी उड़ गई, मेरा दिमाग उधर चला गया कि ये 10 मिनट लेंगे तब तो बहुत मुश्किल है, तब फिर मैंने फौरन किताब खींची कि अब चलो कुछ काम शुरू करें क्योंकि 10 मिनट तो इसमें लग जाएंगे। मैं एक चीज कह दूं अपने ऑर्गेनाइजर्स से, मुझे नहीं कहना चाहिए पर वो इस बात का ध्यान रखें, जो भी माइक पर आए वो सिर्फ एक बहुत बढ़िया भक्ति गीत गाए, हमें बहुत सारे ज्ञान की बातें सुनने की आवश्यकता नहीं होती मंगलाचरण में। मंगलाचरण भगवान की भक्ति से शुरू होता है और जाता कि सबका मन बहुत प्रसन्न चित्त हो जाए और हम डूब जाएं उसमें और फिर बाद में शुरुआत हो। आप ही का घाटा हुआ, मेरा कुछ नहीं होगा, घाटा आपका ही होगा। हाँ, मैंने तुरंत सोच लिया था, फिर नॉर्मल हो गया था, मैंने कहा मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, इनका ही घाटा होगा, ये जैसा भी चाहें वैसा करें। तो एक उदाहरण तो रिकॉल कर लूंगा मैं, मुझे ऐसा विश्वास है, ताकि सारी चीज स्पष्ट हो जाए। पर अपन पहले ये समझें कि हमारा अपना विवेक बहुत जरूरी है। यहां तक तो हमने समझ लिया, क्योंकि उसमें तो इतना ही लिखा हुआ है कि मन वचन का एक ही क्रिया होती है, कोई ना कोई कषाय होती है, निरंतर कर्म आते रहते हैं, भले भी आते हैं बुरे भी आते हैं, अब करना क्या है, ऐसा विचार तो हमने कई बार कर लिया, मिथ्या त्वृत्ति प्रमाद कषाय और योग इनके द्वारा आश्रय होता है, ये सब जगह लिखा हुआ है। जब भी अपन पढ़ेंगे एक और वो आता है उसमें क्या है, मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहूं और सर्वस लूटे सुद नहीं, ये तो हम खूब पढ़ते हैं। हमको मोह नींद लगी हुई हो, जैसे कि रात में हम सोए हुए हों और दरवाजे बिल्कुल बंद हों, लेकिन आने वाला चोर हो तो वो दरवाजे कहीं ना कहीं से खोल करके भीतर आ जाता है और सब हमारा सामान चुरा करके और चला जाता है, हम सुबेरे जागते हैं। ये भी हमने खूब पढ़ा है। मोह की नींद बड़ी प्रबल है, उसमें हमारा सब कुछ लुट जाता है, फिर भी हमें ध्यान नहीं रहता। पर ये सब चीजें हमारे जीवन को ज्यादा प्रैक्टिकली हमें कोई लाभ नहीं दे पाती हैं। हमें करना क्या है ये समझ में नहीं आता। हमें मन वचन काय और कषायों पर किस तरह से लगाम लगानी है, या कि उसकी बलगाओं को अपने विवेक के द्वारा कैसे कैसे संभालना है, ये प्रक्रिया है। जब कोई मुझे खोटे वचन कहे तो मुझे करना क्या है? जब कोई मेरे बारे में बुरा विचार करे या मेरा मन दूसरे के बारे में बुरा विचार करना हो तब मैं क्या करूं? जब मेरे शरीर के द्वारा कोई बुरी चेष्टा होने लगे तब मुझे करना क्या है? इतनी सी चीज है। मेरे अपने परिणाम जब बिगड़ने लगे तब मुझे करना क्या है? मुझे इस बात का विवेक जागृत रखना है, सिर्फ इतनी सावधानी रखनी है कि मैं जल्दी से जल्दी उन कषायों को और उन मन वचन काय की क्रिया को डाइवर्ट करके और शुभ की तरफ ले जाऊं, क्योंकि जितने क्षण मेरे अपने शुभ के हैं वे ही मुझे संभालने वाले हैं, बाकी तो क्षण अशुभ में ही चले जाते हैं। मेरे मन वचन काय का अभ्यास अशुभ का ज्यादा है, मेरी कषायें भी मुझे मलिनता की तरफ ही ले जाती हैं। ऐसी स्थिति में मुझे उन सब के बीच में और इतनी सावधानी और इतनी सजगता या कि ये विवेक रखना है कि मुझे करना क्या है।